अब इस बात का जवाब कि जिन लोगों ने या तो पैगंबरों को माना ही नहीं और ये कहा कि ये तो पैगंबर कैसे हैं, ये तो जी बाजारों में फिरते हैं और जी इनकी तो बच्चे हैं और इनकी जरूरियात हैं और ये खाते पीते हैं, तो इनको हम कैसे पैगंबर मान ले। दूसरी तरफ वो जिन्होंने पैगंबरों को खुदा का बेटा ही बना लिया, मुशरिकीन मक्का ने तो ये कहा ना, अगर पैगंबरी देनी ही होती ताइफ के सरदार कम थे, मक्का के सरदार कम थे, यही रह गया था जिसको पैगंबरी देनी है। इस तरह की वो बुरी बातें करते थे। और इसी तरह कईयों ने मलाइका को खुदा की बेटियां बना के रख दिया। तो रसूलों जो के बारे में, जो नबियों के बारे में, रसूल में इसलिए नहीं कहती, यहाँ पे रसूल का लफ्ज आएगा तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, पैगंबर जो इंसानों में से पैगंबर है उनके बारे में और फरिश्तों के बारे में, जो लोगों के कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया गया। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसूल, अल्लाह ताला चुन लेता है फरिश्तों में से भी पैगंबर, पैगाम लाने वाले, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना तो उनको चुन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह की अस्तग़फिरुल्लाह बादशाहत में उसकी खुदाई में शरीक हो गए, नऊज़ु बिल्लाह के उसकी बेटियां बन गए, ये मतलब थोड़ी है। अल्लाह ने चुना, उसके तो पता नहीं कितने फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह के लश्करों को वही जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अल्लाह के लश्करों को तो वही जानता है कि उसके कितने लश्कर हैं, और वो फरिश्ते इतने बेशुमार, पता नहीं अरबों खरबों कर कितने फरिश्ते हैं जिनकी आज तक बारी ही नहीं आ रही। बैतुल मामूर का तवाफ करने पे रोजाना हो रहा है तवाफ, उनकी बारी एक की आ जाए तो दूसरे की नहीं आती, तो सोचे कितने फरिश्ते हैं। उनमें से अल्लाह ताला ने कुछ को चुन लिया, वही के साथ आ रहे हैं, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ रहे हैं और भी फरिश्ते हैं। तो वो अल्लाह ताला फरिश्तों में से जिसको चाहे अपने पैगाम रसानी के लिए चुन ले कि मेरा पैगाम लेकर जाओ, वह मीनन्नास, और लोगों में से भी जिसको चाहे चुन ले। अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो जिसको चाहे चुन ले, भी इसका मतलब नहीं कि वो इंसान जो है अब तुम्हारे से अल्लाह पूछे पहले कि किसको मैं रसूल बनाऊं और किसी सरदार को बनाना चाहिए या किसको। और ये किसी चीज के अंदर भी आता है, अल्लाह ताला की मर्जी है, जैसे कुरान में आता है अल्लाह की मर्जी है किसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। कौन होते तुम्हें एतराज करने वाले, इसको ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जैसे वो लोग कहते थे इनको क्यों नहीं पैगंबरी मिल गई, हम इतने बड़े बड़े सरदार हैं हमें क्यों नहीं मिल गई। अल्लाह चुनता है, ये किसी के एप्लीकेशन देने से, किसी के चाहने से, या किसी की बहुत ज्यादा इबादत करने से उसको नबी नहीं चुन लिया जाता। अल्लाह ताला इस्तफा, इस्तफा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला प्योर कर ले, चुन ले, खालिस कर ले, उसने स्पेशली किसी को कि उसकी स्पेशल सिलेक्शन है अपने दीन के काम को पहुंचाने के लिए इंसानों तक। तो अब ये उसकी मर्जी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अभी इस बात को हदीस को इसलिए भी गौर से सुने कि बाज़ हम कहते ना हाय काश हम आपसे सलम के वक्त में होते, तो पता नहीं बड़े इसका शौक रखते हैं, तो हम जरूर जब मैं हदीसें पढ़ती हूँ ना कहते हैं हम जरूर इस काबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हमें नहीं चुना। इस हदीस से आप देखे अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के दिलों का जायजा दिया, ये आपसे सलम ने फरमाया, सारे लोगों का दिलों का जायजा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे बेहतरीन दिल पाया, और उन्होंने के दिल को ना अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन, तो उनको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया। फिर अल्लाह ताला ने बाकी लोगों के दिलों का जायजा लिया, यानी आपसे सलम के अलावा जो बाकी लोग थे उनके दिलों का जायजा लिया, उनमें सबसे अफजल दिल सहाबा कराम का पाया। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी की सोहबत के लिए चुन दिया, सुभान अल्लाह, उनका चुनाव भी अल्लाह ने किया हुआ। तो पैगंबर का तो चुनाव क्या, उनके साथियों का भी चुनाव अल्लाह ताला ने किया कि मेरे नबी के ये साथी होंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन वो फिर भी बंदे ही रहते हैं, और इंसान के लिए सबसे बड़ा मर्तबा इसी में है कि वो अल्लाह का बंदा है और बंदा बन के रहे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए भी अब्द का लफ्ज आप देखे सूरह इसरा के शुरू में, देखे सूरह कहफ आप पढ़ते हैं, अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, इसलिए कि अब्द में उनकी शान है कि वो अल्लाह के गुलाम है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि उस शायर ने कहा कि मेरा ये देखो कि मैं किसका गुलाम, तो अल्लाह की गुलामी जो है वो इंसान के लिए बुलंद मर्तबा है, यही उसकी मर्तबे की, उसके दर्जे की हाइट, बुलंदी यही है कि वो अल्लाह के आगे झुका हुआ, और फरिश्ते भी उसने मुंतखब किए हैं। और सूरह फातिर में आप देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के पास फरिश्ते हैं, दो दो परों वाले, तीन तीन परों वाले, कई बहुत परों वाले भी हैं, 600 परों वाले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो जिसको चाहे अल्लाह चुन ले, अल्लाह समीउन बसीर, वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी। अब यहां से देखें ये कादियानियों ने इस आयत को लेकर, अब देखें ना जो लोग उन्होंने गुमराह करना है लोगों को और खुद अपने लिए झूठी दलीलें निकालनी है, वो भी इसी कुरान से निकाल के लाते, तो कादियानी कहते हैं कि जो अहमदी लोग जिनको कहते हैं, वो इसी आयत से दलील लाते हैं कि देखे ना अल्लाह तआला ने यस्तफी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये तो मुजारी है, जो इसमें हाल और मुस्तकबिल आता है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तआला चुनता रहेगा भी लोगों में से, तो हमारा भी ये मिर्जा कादियानी मलाउन जो है ये भी अल्लाह का नबी है। अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, दज्जालून 30 झूठे और दज्जाल फरेबी फरेबी आएंगे, और सब ये दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो आप सल्लम के बाद इतने दज्जाल आने हैं, और देखो आज कितने लोगों को, वो तो दुनिया से चला गया लेकिन उन्होंने कितने लोगों को अपने पीछे गुमराह कर दिया। तो आयत को डिफरेंट ही मीनिंग निकाल के और अपने लिए दलील दे दी। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके आगे है जो उनके पीछे है, फिजिकली भी जानता है जो आगे है जो पीछे है, और वैसे भी जो पास्ट है और फ्यूचर है वो जानता है, और वो ही जानता है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालत, वो ही जानता है किसके ऊपर अपनी रिसालत डाले, किसको रिसालत के लिए चुने, किसको ये पोजीशन दे, वही अल्लाह तुरजाउल उमूर, सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटने हैं, उसको हमें जवाब देना है, उसके सामने हमें खड़े होना। अब ये आखिर की जो दो आयात है बहुत अहम आयात है, इसमें करने के काम हमें बताए गए हैं। पहली आयत के अंदर वो करने का काम बताया हुआ है जो इंडिविजुअल बेस पे हमने करना है, फिर वो आगे कलेक्टिवली करने के काम है। तो पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ईमान वाले हैं ना, तो ईमान वालों तुम्हारा काम क्या है, इरकाओ रुकू करो, वसजुदू और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम इबादत करो अपने रब की, वफालुल खैर और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तब तुम इस पोजीशन में होगे कि तुम फला पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। तो यानी सबसे पहला काम रुकू और सजदा, तो नमाज क्यों नहीं कह दिया गया, नमाज भी तो कहा जा सकता था ना। देखिए रुकू और सजदा कहने के अंदर, रुकू सजदा नमाज में जो पोजीशंस है ना उनमें देखिए चार पोजीशन ही होती है, या तो खड़े होने की पोजीशन है, या रुकू की, या सजदे की, और या बैठने की। ठीक है, जो खड़े और बैठने की पोजीशन है वो वैसे भी आप कभी इसी तरह खड़े होते हैं, कभी इस तरह बैठे भी होते हैं, आप जमीन पे बैठते तो अक्सर वैसे ही बैठ जाते जैसे हम तशहुद में बैठते हैं, लेकिन रुकू और सजदे की पोजीशन जो है ना बड़ी खास, बड़ी यूनिक पोजीशंस है जो नमाज के साथ ही खास है, और इनके अंदर कुछ यूनिक बात है। वो क्या कि देखें आप, जब इंसान रुकू के अंदर जाता है तो वो एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को डाल लेता है कि जिसके अंदर वो बहुत ही गैर मुस्तहकम होता है, यानी जरा सा भी कोई उसको हाथ भी लगाएगा ना वो आगे गिर जाएगा, बड़ी कमजोरी की पोजीशन होती है ना, वो अपने आप को झुकाए भी होता है, बड़ी आजी और एक जिल्लत की पोजीशन के अंदर, चाहे वो कोई बड़ा पहलवान है, चाहे वो कोई ताकतवर आदमी है, चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई वजीर है, जो मर्जी है, कितनी भी बड़ी उसकी पोजीशन या पावर या ताकत हो, वो ऐसी ऐसी स्टेट में अपने आप को डाल लेता है अल्लाह ताला के आगे कि जैसे बिल्कुल गिरा पड़ा है, और इतनी वल्नरेबल पोजीशन में डाल देता है, इतनी अनबैलेंस्ड पोजीशन में डाल देता है कि बस जरा सा धक्का लगा तो मुंह के आगे गिर जाए, मुंह के बल गिर जाए, और उसमें जाके वो क्या कहता है, सुभान रब्बी अल अज़ीम, आज़म कहते हैं, अजमत को भी कहते हैं कि पाक है मेरा रब जो अजमतों वाला है, अजीम है। और आजम कहते हैं ताकत को भी, इस्तेहकाम को भी, स्टेबिलिटी को भी। तो मेरा रब मुस्तहकम है, वो है उसको स्टेबिलिटी है। मैं क्या हूं, मैं तो इस तरह हूं कि ऐसी कि मैं बिल्कुल अनस्टेबल, मेरी पोजीशन क्या है कि अभी गिर जाऊं, मैं इतना कमजोर, और मेरा रब लेकिन वो अजीम है। फिर आप अगली पोजीशन में जाएं सजदे की, सजदे के पोजीशन में आप जब गए तो ये तो आपने अपना सबसे जो मुअज्जज करीम मुकाम है चेहरा, उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे लोग अपने पैर रखते हैं, उसी कारपेट पे, उसी जमीन पे लोग पैर रखते हैं ना, वहां पे अपनी नाक और माथा टेक दिया। माथा इंसान की इज्जत की अलामत, और उसका चेहरा उसकी इज्जत, और वो चेहरे को कभी नीचा नहीं करता, चेहरे को बचाता है हमेशा। और इंसान ऐसी पोजीशन में अपने आप को ले आया जहां पे उसका चेहरा जमीन के ऊपर है, सबसे नीचे, इससे नीचे तो नहीं जा सकता। वो चेहरा जो हमेशा बुलंद रहता है वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ, और वहां पे वो क्या कहता है, सुभाना रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो वो आला है, वो बुलंद है, और मैं क्या हूं, मैंने अपने आप को इसमें डाला हुआ, इस पोजीशन में मैं कितना नीचे हूं कि मेरे जो बुलंद मुकाम है वो भी नीचे है, जमीन के ऊपर रुला पड़ा है, और मेरा रब बड़ा आला है, बुलंद। अपनी हैसियत अपने रब के आगे रखी हुई है कि मैं ये हूं लेकिन मेरा रब वो आला है। अल्लाह अकबर, ब्यूटिफुल। ये जो दो पोजीशंस हैं कितनी खूबसूरत है, अगर इनको समझें तो कितनी प्यारी पोजीशंस हैं। इंसान अपने आप को गिरा देता है। आप देखें किसी और टाइम पे भी नमाज के अलावा आप इन पोजीशंस में नहीं होते, या देर तक नहीं होते, जमीन से चीज भी उठाते हैं तो बस झुके और उठा ली, बस ऐसे करके अपने घुटने पकड़ के आप पड़े नहीं रहते कि रुकू के अंदर ही है, और ऐसे आप कभी भी अपने नाक और माथा जमीन पे तो रखते ही नहीं नमाज के अलावा। ये यूनिक पोजीशंस जो अल्लाह ताला के सामने इंसान रख देता है, और जब उसने अपना सर रख दिया तो अपनी अकल भी रख दी, अकल भी इसी के अंदर है, ये भी झुका दी अल्लाह तेरे आगे, और इंसान पूरा को पूरे अपने जिस्म को बिछा देता है। तो ये नमाज की तरफ ही इशारा है, लेकिन एक खूबसूरती से उसको बयान किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका ईमान नहीं है जिसकी नमाज नहीं है, तो नमाज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहा गया है ईमान वालों रुकू करो और सजदा करो, वाबुदु रब्बकुम, और इबादत करो अपने रब की। अब रुकू और सजदा ये नमाज भी तो इबादत ही है, हम तो नमाज को ही इबादत समझते हैं ना। अब नमाज पढ़ ली तो हमें लगता है हमने सारी इबादत कर ली है, हालांकि इबादत से पता चला कि नमाज के अलावा, नमाज की तो पीछे बात हो गई है वरका वरकाउ और वसजुदू में, और इबादत की अब बात हो रही है, इसका मतलब नमाज के अलावा भी जो आप मुसल्ले से उठते हैं वो टाइम भी इबादत में स्पेंड करना है। 24/7 तुम्हारी इबादत होनी चाहिए। इबादत का मतलब क्या, यानी आब्द बन के रहो अल्लाह के, गुलाम बन के रहो, ठीक है। इबादत से मुराद तमाम की तमाम नेकियां जो अल्लाह और उसके रसूल ने बता दी, जिसमें रोजा भी है, नमाज भी, जकात भी, हज भी, सारे अहकाम इस्लाम भी। तो नमाज को सिर्फ काफी नहीं समझे कि बस मेरी इबादत हो गई, बल्कि अबूदियत मतलूब है कि अब्द बन के रहो, झुक के रहो, गुलाम बन के रहो। वफ़अलुल खैर, और खैर के काम करो, भलाई करो। इमाम बगवी लिखते हैं कि यहां पे खैर से मुराद खास खैर का हुक्म है, बाकी आम नेकियां तो खैर में आ ही जाती हैं, जितनी भी नेकियां सारी खैर के काम है, लेकिन खास नेकी का हुक्म है, और वो क्या है, सिला रहमी और मकार में इखलाक। मकार में इखलाक का मतलब क्या, अखलाक अच्छे रखना, आपकी अखलाक कैसे हो कि ये नहीं है कि आपके अखलाक डिपेंड्स ऑन कि कोई कैसा है या कोई कौन है। अगर कोई टीचर है या ऑफिसर है, प्रिंसिपल है, बड़ा आदमी है, मालदार है, तो मेरे अखलाक बड़े अच्छे हैं। और जब वो नहीं है और आम लोगों के साथ में मामला करें, तो मेरे अखलाक का मुझे दर्स भूल ही गया कि मैं अखलाक भी क्या चीज होता है। तो मकार में अखलाक, ये जिंदगी का ऐसा रवैया है जिसको आप अपने, यानी आपकी जिंदगी के अंदर आपकी नेचर में ढल चुका हो। आप आपको सोचना ना पड़े कि ये कौन मेरे सामने आया है तो मैं उसके साथ कैसे बात करूं। ये एक आदत हो आपकी, जिसके तहत आप अपनी बातचीत और अपना लोगों के साथ मामला करें। अगर सोचना पड़ता है ना, तो फिर वो अखलाक नहीं। सोचना है ये है तो मैं ये करूंगी, ये फलां है तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं। बाहर वाले हों या घर वाले हों, अपने हों या पराए हों, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, टीचर हो या शागिर्द हो, कोई भी है, बड़ा ऑफिसर हो या नौकर हो, सबके साथ सेम अखलाक। ये है फिर अच्छा अखलाक। ये नहीं बाहर वालों के साथ किसी तरह बोलना है, घर वालों के साथ किसी और तरह बोलना है, खास लोगों के सामने कुछ और ही हाल हुलिए और बातचीत हो जाए, और आम लोगों के सामने कुछ और ही तरह से आप पेश आए, ये नहीं है। ठीक है, तब समझ लें कि आप अच्छे अखलाक के मालिक नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, अच्छा अखलाक यही है, तभी आपके अंदर अच्छा अखलाक होगा जब सबके साथ आप सेम होंगे, यानी सबके साथ ही अच्छे। ठीक है, और बाकी खैर के काम तो करते ही रहना। इसके अलावा ये और सिला रहमी, दूसरा सिला रहमी बताया ना, यानी अपने रहम के रिश्तों को मिलाना, ये है, ये इसका हुक्म दिया जा रहा है। और बाकी जैसे मैंने बताया कि हर लम्हा ही जिंदगी के अंदर यही होना चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हर लम्हा नेकी में इजाफा ही हो रहा हो, पूरी जिंदगी ऐसी। वो दुआ है ना, लम्हा असले ली दीनी अल्लती हुआ अस्माती अमरी असले ली दुनिया ये लती फी हम आशिक असले ली आखरत लती फी हम आदि, उसका एंड है वह जाल हयात ज्यादा तल्लीफ कुल्ली खैर वह जाल मऊत राहत ली मिन कुल्ली शर। ये मुझे इतनी पसंद है, मेरे अपनी सुबह शाम की दुआओं के अंदर इसको शामिल कर लूँ, मुझे इतनी पसंद है, क्योंकि इसमें क्या मांगा कि अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसे बना दे कि हर दिन मेरा नेकी में इजाफे का ही बायस हो, मेरी जिंदगी ऐसी हो कि हर लम्हा इसका, और मौत ऐसी हो कि मेरे लिए राहत बन जाए। ठीक है, और ये जब चार काम करोगे तो फिर फरमाया कि फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर तुम बात कर सकते हो कि तुम फला पा जाओ। अब देख लें आप, इसके अंदर नमाज भी आ गई, इसके अंदर नमाज के अलावा का भी आपका टाइम आ गया, उसमें भी जो भी आप जहां पे भी हैं अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की गुलामी में रहें और शिर्क से बाज रहें। और फिर फेलुल खैरात के अंदर ये दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका फेलुल खैरात, इस तरह की दुआ भी है मसनून दुआओं में। और नेकी के काम करते रहें, तब जाके फलाह की उम्मीद की जा सकती है। और ये आपने देखा है आते सजदा भी है, और इसमें उलमा का इख्तलाफ है, बाज कहते हैं आयते सजदा है और बाज ने इसको आयते सजदा नहीं समझा, इमाम शाफी के नजदीक और बहुत सारे और सहाबा ने भी इसके ऊपर सजदा किया, और दूसरे इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक वगैरह उन्होंने इसको सजदे की आयत नहीं करार दिया, उन्होंने अपनी वजूहात बयान की हैं। इसी वजह से कुरान पाक में बाज ने कहा 15 सजदे है, और बाज जो इसको सजदे की जगह नहीं मानते उन्होंने कहा 14 सजदे। जो कहते हैं कि यहाँ पे सजदा है वो हदीस लेकर आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हज की फजीलत में ये फरमाया कि ये इसमें 2 सजदे हैं, जिसने ये 2 सजदे नहीं किए तो ये सजदे की आयात भी ना पढ़े। तो और सजदे को आप थोड़ा ताखिर से भी कर सकते हैं, यानी आपने पढ़ा फिर उसके बाद आपने सारी तिलावत मुकम्मल करके फिर सजदा भी कर लिया, वो भी सही है। और आप पढ़ने पढ़ाने में या याद कर रहे हैं तो 10 दफा अगर आप पढ़ते हैं, 20 दफा पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर एक सजदा ही काफी है। अगर सजदा नहीं भी करते तो फर्ज नहीं है, लेकिन कर लिया तो इसका सवाब है बहुत, ठीक है। तो लिहाजा कर लेने के अंदर ही ज्यादा हमें कौन सा कोई मुश्किल लगती है, ऐसी कोई मसला तो नहीं है करने में, लिहाजा हम अगर कर ही लें तो अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा एक बात और यहाँ पे रह गई कि यहाँ पे वाबुदुल्लाह नहीं कहा गया, आवदु रब्बकुम कहा गया, अपने रब की इबादत करो। क्यों? अगर इंसान को याद आ जाए कि वो मेरा रब है जिसकी इबादत करने का कहा जा रहा है, जैसे कहते ना अपनी माँ का कहना मानो, तो अब माँ का कहना मानो ये नहीं कहा जाता कि मतलब सफिया का कहना मानो, आयशा का कहना मानो, नहीं माँ का कहना मानो कि तुम्हें वो रिश्ता याद दिलाया था, इस रिश्ते के तुम्हारे ऊपर एहसान आते, तो वो रब है तुम्हारा, आबुदुल्लाह कहा जा सकता था, लेकिन याद करो ना वो तुम्हारा रब है। रब कौन है? मालिक, जो खालिक, जो तुम्हारा सस्टेनर है, तुम्हें चलाने वाला, तुम्हें रिस्क देने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला, तुम्हें पालने वाला, जिसने सब कुछ तुम्हें दिया है, उसकी इबादत करो। और दूसरी बात ये वफालुल खैर, खैर करो, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो खैर है, वो खैर के काम करो। अब चाहे क्या हमें हर एक काम में हम सोचते हैं, जब हमारे सामने आते हैं काम जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए हैं, तो हमें तो उनमें कोई खैर नहीं नजर आती, या लोग कहते हैं कि ये क्या बात है, मीडिया उसको बुरा भला कहता है, कोई उसको बैकवर्ड कहता है उस चीज को, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने फिर क्या कहना, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो खैर है, ठीक है। तो हम खैर करने वाले ही बने, और फेल और अमल में क्या फर्क होता है, फेल फौरी कर लिया जाता है, फेल जो है ना अमलू नहीं कहा गया, वफालू फौरी अमल, खैर सामने आए तो फौरी कर लो। अब वो अगले भी आयत के अंदर एक्शन आइटम दिए गए कि आपने क्या करना है, इंडिविजुअली तो आपने ये कर लिया, बाकी सब लोग मिलके क्या करो, वह जा ही तू, और जा ही तू में बड़ी ताकीद है, अटमोस्ट स्ट्रगल को, मेहनत करने को, बहुत ज्यादा कोशिश करना, खुद को पूरी तरह एग्जर्ट करना, फिर ला अल्लाह में का मतलब क्या है, उलमा ने कहा फी सबीलिल्लाह इसका मतलब है, लेकिन फिर ला क्यों कहा गया, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इस चीज को एजाज दिया कि जो स्ट्रगल करता है अल्लाह में, अल्लाह के लिए, यानी ये मेहनत अल्लाह के लिए, फी सबीलिल्लाह है, हालांकि लेकिन अल्लाह ताला ने अपने साथ जोड़ दिया, सबील का लफ्ज निकाल दिया, ताकि इंसान को ऑनर महसूस हो कि अल्लाह ताला के कॉज में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये अल्लाह के लिए मेहनत। जैसे हमने पहले पढ़ा था अंसारुल्लाह, अल्लाह को तो मददगार नहीं चाहिए, या अल्लाह की मदद करो ये कहा गया, तो अल्लाह को तो मदद नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या, अल्लाह के दीन की मदद। इसी तरह फिल्ला का मतलब अल्लाह में मेहनत करना नहीं, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन में कितनी मेहनत करें, हक का जिहादी, जैसे हक है मेहनत की जाए, जैसे अल्लाह ताला का हक है ना कि उसके दीन के लिए मेहनत की जाए, जितने उसके तुम्हारे पर एहसानात है उस तरह से तुम मेहनत करो। अल्लाह अकबर, कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये कि इतनी ज्यादा मेहनत करने का गाजर, क्योंकि अल्लाह ताला का हक तो बहुत बड़ा है, और जितना हक जिहाद का है, यानी जितना मेहनत करने का हक तो उतना ही है जितना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसानात किए, उतनी उसके रास्ते में मेहनत करनी चाहिए ना, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, अपना आप इंसान लगा दे, उसके बाद फिर ये ना कहे आए हम तो थक गए, हम तो इतना काम करते हैं, मैंने तो इतना काम किया, जो अल्लाह के रास्ते का आप काम कर रहे थे उसके ऊपर शिकायतें ना किया करें, शुक्र किया करें। शिकायत किस बात की, शुक्र है अल्लाह तूने करा लिया, तूने इस रास्ते में खपा दिया, वरना कहीं और भी खप सकते थे, और लोग खप रहे हैं दुनिया में, आप देखें लोग कितनी कितनी जगहों पे अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ने अगर आपकी एनर्जी इस रास्ते में लगवा दी तो फिर इतना भी क्या वावेला करने की जरूरत है, मैं तो हर वक्त ही पढ़ती रहती हूँ, मैं तो हर वक्त ये काम करती रहती हूँ, मैं तो ये क्लास का काम कर रही हूँ, मैं तो वो काम कर रही हूँ, मैं तो वहां खड़ी रही, मैंने तो ऐसे किया, सर्दी थी, भूख थी, फलाह हो गया, प्यास लगी। नहीं, मेहनत करो, इतनी मेहनत के हक अदा हो जाए मेहनत करने का, इतनी मेहनत करो। क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला के एहसानात बहुत है, हम अपनी जानें भी दे देना, हक तो यह है कि हक अदा ना हो। हक फिर भी इतना हक है कि आप कुछ भी कर ले, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जान भी दे दी तो हक अदा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जिहाद का मतलब क्या? अब वही वाली बात है कि हमने पहले भी इसके ऊपर काफी हद तक बात की थी, और यहाँ पे दोबारा ये लफ्ज आ गया। तो जिहाद आम तौर पे वैसे लोग जो इसको मिसकंसेप्शन है कि बस लड़ने को जिहाद कहते हैं, और इसी को हमने देखते हैं कि लोगों में इतना मशहूर हो गया कि एक, अल्लाह माफ कर दे, कि इतना खूबसूरत एक लफ्ज है लेकिन इसको एक गाली बना दिया गया कि पता नहीं क्या है। और बाज लोग तो इस लफ्ज को नाम लेते भी डरते, और गैर मुस्लिमों में तो इतना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इतना इसको उछाला गया कि आज डर के मारे कोई इसको इसके नाम लेने पे भी परेशान हो जाता है कोई मुसलमान। तो असल में जिहाद, जद्दोजहद जैसे हम उर्दू में कहते हैं, मेहनत करना, कोशिश करना, किताल जो है, जो लड़ना है, वो जिहाद के, ये नहीं कि जिहाद सारा किताल ही है, जिहाद की एक शाख है ये कह सकते। हर जिहाद किताल तो नहीं होता, जैसे हर इंसान जो है मुसलमान तो नहीं होता, बहुत सारे इंसान है, सारे तो मुसलमान नहीं है। जिहाद तो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर को एक शाख किताल की है। तो मतलब क्या हुआ, यानी पूरी जिंदगी आप तको दो करो, स्ट्रगल करो अल्लाह के रास्ते में। और ये स्ट्रगल कैसे करनी है? ये स्ट्रगल अपने नफ्स से शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते आगे फिर जाएगी, फिर आपके इर्द गिर्द वाले, आपके माशरा, आपके आगे, फिर इसका दायरा वसी होता जाएगा। मगर जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल के का हुक्म आ जाए, तो सबसे पहले ये नहीं तलवार लेके खड़े हो जाए, मार रहे हैं मार रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दीन को एक ऐसे पोर्ट्रे करके बताया जैसे एक मुतशद्दिद दीन है, एक बस इस दीन के अंदर कोई दहशत है, बस दहशत फैलाते रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह रसूल का हुक्म है तो उसको मानना है ना। अब उसके अंदर अब सबसे पहले अपना नफ्स ऑब्स्टिकल बनेगा, रुकावट बनेगा। नफ्स कहता मेरा दिल नहीं करता, मेरी भी तो कुछ मर्जी है, जिंदगी एक दफा मिली है, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारू, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी अकल मेरी मर्जी, मेरा वक्त मेरी मर्जी। देखो जिसको हर एक यही कह रहा है ना, तो इंसान का अपना नफ्स भी उसको यही कहता है। सबसे पहले नफ्स के खिलाफ जिहाद। तो जिहाद का मतलब अगर तलवार लेना होता तो फिर पर लगे को खुदकुशियां करना शुरू हो जाए। तो इस लफ्ज को अब्यूज किया गया है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल मुजाहिद वो है जिसने अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया अल्लाह की इताअत के लिए, कि अल्लाह की इताअत की तरफ इसको लेकर आए, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद। यानी इंसान अपने नफ्स को फिर दबाता है, इसके खिलाफ मेहनत करता है और अल्लाह का हुक्म अपने ऊपर पहले लागू करता है, ठीक है, चाहे अपनी मर्जी नहीं भी है, सबसे पहले तो अपनी मर्जियों के साथ जिहाद करे ना। अच्छा, फिर उसके बाद, क्योंकि हक्का जिहाद ही करना है ना, जिहाद हक अदा हो जाए, ये नहीं कि अपने ऊपर करके ही बैठे। अब आप जहां कहीं भी बैठे, जिस पोजीशन में भी आप हैं, जिधर भी आप रहते हैं, वहां पर आप अल्लाह के दीन के ऊपर चलने को की कोशिश करें कि अल्लाह के दीन पे चला जाए। इसमें सबसे पहले अपने इर्द गिर्द वाले आ जाते हैं, घर वाले हो गए, फिर दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, खानदान, माशरा, कम्युनिटी आपकी। अब इसके अंदर हर जगह पे आप पोजीशन ऑफ पावर में नहीं होते, राइट? हर जगह पे तो आपकी ताकत नहीं चलती ना, हर जगह पे तो आपका कहना कोई मानने के लिए खड़ा नहीं हो जाएगा। आप सड़क पे होकर कुछ कहना शुरू हो जाए खड़े होके तो कुछ भी नहीं मानेगा। लेकिन जहां पे भी आपके पास पावर है, मसलन मीडिया है, मीडिया में भी तो आप एक पावर होती है ना, आपको मतलब लोग सुनते हैं, आपके कोई फॉलोअर्स हैं, आपको लोग देखते हैं, तो या आप किसी ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए, किसी ऐसे ओहदे ओहदा आपके पास है कि आपकी चलती है वहां पे, या अपना घर है, आप अपने घर के सरबराह हैं, आप अपने घर के ऊपर एक बाप की, शौहर की हैसियत रखती है, या एक बीवी है, माँ की हैसियत रखती है, यहाँ पे उसके पास पावर है। तो जिन जिन जगहों पे भी इंसान पोजीशन ऑफ पावर में, उसके पास अथॉरिटी है, अख्तियार है, वहां पे वो फिर अपने इर्द गिर्द वालों के ऊपर भी अल्लाह के अहकामात को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोशिश करेगा, ये उसका जिहाद है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं सिंपल सी बात बता रही ताकि आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझ आ जाए। अच्छा, अब मसलन आपके पास पावर ही नहीं, हर जगह तो नहीं ना पावर होती, पावर नहीं है, क्या करें आप? तो आप क्या करें फिर? पहले तो आपके पास इतनी ताकत थी कि आप मतलब हर तरह से अपनी पावर यूज कर सकते थे, हाथ से भी और कैसे भी, लेकिन अब आपके पास पावर नहीं है, तो चलो जुबान से ही रोके, दूसरे को मना करने के लिए तो नहीं कोई पावर चाहिए होती ना। आपने किसी को देखा, कोई कोई गलत काम कर रहा था, या कोई अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा था, आपने जुबान से अब बात पहुंचाई अल्लाह के, तो ये जरा निचला लेवल है, लेकिन जाहिर है अगर आपकी जितनी पावर है उतनी ही आपसे पूछ है। अच्छा, फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे जुबान से बोलना भी मुमकिन है ही नहीं, यहाँ अखलाकी जरूरत ही आपके पास नहीं है, तो फिर कम से कम दिल में तो बुरा समझिए ना, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो अब आप जब दिल में बुरा समझते हैं फिर भी ईमान होता है, पहले क्या पोजीशन थी? पहले आपके पास पावर थी, तो आप हाथ से भी रोक सकते थे, आपके अंडर पुलिस आती है, आपके अंदर आपका महकमा आता है, आपका डिपार्टमेंट है, आप किसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, या क्लास की टीचर हैं, या आप किसी जगह के ऊपर एक यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, या आप कोई लॉज बनाती हैं, कोई रूल्स बनाती हैं, ये सारी आपकी पोजीशंस है ना। आप घर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, तो वो है, आप रोक सकती हैं, टोक सकती हैं, कह सकती हैं, तो ये सारी पावर की है। अब पावर के ऊपर रहते हुए भी आपने जाहिदु फिल्लाह करना, आपका जिहादी है। जब आपकी ये पोजीशन नहीं होती तो तब भी आपने ये छोड़ना नहीं है, फिर आपने जुबान से जिहाद करना, जुबान से आप रोके। जब ये भी नहीं होती तो फिर आप कम से कम दिल के अंदर ही बुरा जानते रहे। लेकिन आज हर कोई कहता है मेरी मर्जी, आप क्यों इंटरफेयर करते, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, यू माइंड योर ओन बिजनेस। बच्चे भी यही कहते हैं, हमारी जिंदगियां, दोस्त अहबाब भी, खानदान वाले भी, किसी सोशल गैदरिंग को देखते हैं वहां तो वैसे ही आवे का आवा ही बिगड़ा होता है, ना कोई किसी को कुछ कहता है और ना कोई पसंद करता है कि उसको कहा जाए। आप देख ले आज बेपर्दगी की इंतहा होती है हमारी शादियों पे, और क्या कुछ नहीं हो रहा होता। अब हमने बिल्कुल इन मामलात को छोड़ दिया, दिल में बुरा जानना भी छोड़ दिया, मर्द बैठे होते हैं और उनकी बीवियां भी पूरी सज धज के साथ मर्दों के साथ, दूसरे मर्दों के साथ बैठी होती हैं या उनके सामने घूम रही होती हैं, लेकिन किसी मर्द को यह गैरत नहीं आती कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, इसके ऊपर कितनी नजरें जा रही हैं, मैं इनको कुछ कहूं? कुछ भी नहीं कहते। उनके सामने उनकी बहू बेटियां डांस करती हैं, कुछ नहीं कहते, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कहता, सारे देखते हैं, बहुत खुश होकर देखते, तालियां भी बजाते हैं, फिर वहां से उठ के बाहर जाते तो फिर बातें बनाते हैं। ये हमारा जिहाद हो रहा है, तो ये बात नहीं है। वो उस वक्त आपने एंजॉय कर लिया, बाहर जाके बातें बना ली, अगर आपको इतना ही आपका जिहादी तो ये था ना कि आपको इतना दिल में बुरा लगता कि आप वहां से उठ जाते, लेकिन आपको नहीं शर्म आई, पहले एंजॉय भी करते रहे, मजा भी ले लिया, फिर उसके बाद बाहर जाके देखा इन्होंने ऐसे किया, देखो उनकी एक एक चीज नोट करके, उनकी जो बुराइयां अब कर रहे हैं, तो या तो उनको उस वक्त रोकते, नहीं रोक सकते थे तो उठ के ही आ जाते, अपने आप से तो जिहाद कर सकते थे ना। तो अगर हम ये सारी चीजें देख के एंजॉय करते हैं, म्यूजिक लाउड चल रहा है, कान पड़ी आवाज नहीं आ रही, हम आराम से बैठे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, सब चीजें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द मर्द के साथ हाथ डराले जा रहा है, ये क्या फर्क पड़ता है? देखो आजकल तो ये भी हो रहा है ना, बेहयाई इतनी आम हो गई है, बेहयाइयों के प्रोग्राम हम बैठ के देखते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चे भी देख रहे हैं, उनको क्या हो गया, मूवी ही देख रहे हैं ना, और उसके अंदर बेहयाई के सीन आ रहे हैं, सारा घराना बैठ के देख रहा है, बेहया कपड़ों के साथ लड़कियां नाच रही हैं, बेटियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, खुद भी साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि दिल में भी बुरा नहीं लग रहा तो बैठे में ना, अगर दिल में बुरा लग रहा होता तो इतनी अथॉरिटी तो थी कि इसको बंद कराते। अगर हम इस उस नहज पे पहुंच चुके हैं ना, तो हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। औरतों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो जितनी बेहया होंगी ना और जितनी बेपर्द होंगी, वो अपना उनको खुद नहीं बेनिफिट मिल रहा, उनके बेनिफिशियरी मर्द हैं जिनकी आंखों के नजारों के लिए आपने अपने आप को बेपर्द कर दिया, तो वो बेनिफिशियरी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये हमारा फरीजा है, हक्का जिहादी, इतना जिहाद करना। वो किताल जो लड़ने वाली बात है ना, जो आज के जोशीले नौजवान बड़े शौक रखते हैं जी, कभी इंटरनेट पे बैठ गए और किसी की तकरीर सुन ली और किसी के पीछे लग गए और फिर जी आज हम लड़ने चल रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो आज अल्लाह ताला ने फौजें अता कर दी है ना हमें। हजरत उमर के दौर में जब फौज का डिपार्टमेंट बन गया था और फौज अंडर द स्टेट आती है, तो किताल का फरीजा उनके जिम्मे है। जैसे हमने पिछली दफा भी बात की थी कि डिक्लेयर किताल को डिक्लेयर स्टेट करेगी, इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे, तो वो वाला तो शोभा उनके जिम्मे आ गया। अगर आपको लड़ने का शौक है तो आप फौज में भर्ती हो जाए फिर, लेकिन बाकी जो जिहाद है वो तो करेंगे ना, चाहे वो कलम से करें, चाहे वो जुबान से करें, इंटरनेट पे जाके को टाइपिंग करके आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी तरह से भी करें, मगर अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करने के लिए कोशिश करना और बुराई को खत्म करने के लिए कोशिश करना, ये सब जिहाद है। लेकिन हम तो कंफर्टेबल होने लग गए बुराइयों के साथ भी, हर बुराई के साथ हम कंफर्टेबल हैं। जो कुछ हमारे माशरों में हो रहा है, कुछ भी होता रहे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। स्लीवलेस औरतें पहन के फिर रही हैं, आधी टांगे नंगी है, औरतें मर्द एक साथ बैठे हुए हैं, स्मोकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रही है, सब पे हम कंफर्टेबल। जब सब में कंफर्टेबल हो जाए ना, तो फिर ईमान नहीं है, फिर अल्लाह अकबर। हुआ तबाकुम, उसने चुन लिया तुमको, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है उम्मत मुस्लिमा, अब आपका ये काम है कि आप ये करें। वमा जाल अलैकुम फिद दीनी मिन हरज, और उसने दीन में तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं रखा, कोई तंगी नहीं रखी। अच्छा, जो लोग उन्हें अपनी मनमानी करनी होती है, वो कहते देखे देखे कुरान में तो ये, दीन में तो कोई तंगी है ही नहीं, आप क्यों तंगी करते? हम कपड़े उतार के फिरे, नंगे फिरे, आपको क्या, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? देखो दीन में तो कोई तंगी नहीं, दीन तो इतना आसान है। इन्होंने ही तंगियां की हुई है, ये जो मौलवी है ना, यही सारी तंगियां कर। यहाँ पे भाई दीन में तंगी नहीं रखी, इसका मतलब ये है, ये मतलब नहीं कि आपको आजादी दे दी, आप जो मर्जी करें, कोई तंगी तायर है? इतनी तंगी तो है ही कि जो सुबह को उठना है वो भी तो तंगी है ना, फजर के लिए उठना तंगी है कि नहीं है, तहज्जुद के लिए उठना तंगी है कि नहीं, रोजा रखना तंगी है कि नहीं? यहाँ पे हरज का मतलब है ऐसी मुश्किल, ऐसी तंगी नहीं रखी जो आपकी ताकत से बाहर हो, ये मतलब है। दीन आसान, दीन इन्होंने मुश्किल बनाया, ये ऐसे करते, देखो देखो ये लिखा, ये सारी बातें इसलिए कि आपको समझ ही नहीं आई कि क्या है कहा जा रहा। तो इसके अंदर ये कि ऐसी कोई चीज अल्लाह ताला ने नहीं रखी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इंसान की ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता, यानी जो आपकी ताकत में नहीं है। आपको कह दिया जाए बीमार है चाहे पड़े हुए, आपने खड़े होकर ही नमाज पढ़ ली, आपकी टांगे चलती ही नहीं है, वो खड़े होकर नमाज पढ़ ली, घुटने घुटने नहीं चलते, और आपको कहा जाए आप जमीन पे सजदा करेंगे, बस आप बैठ के भी नहीं कर सकते, आप बूढ़े हैं, जयीफ है, बीमारियां लगी हुई, लगन आपने रोजा रखना ही, ऐसी ऐसी तंगियां नहीं रखी गई ना। देखिए इससे दीन आसान किस तरह है कि अल्लाह ताला ने रुख्सतों के रास्ते रखे दीन में, ये है आसानी का मतलब, क्योंकि पिछली शरीयतों में ऐसा नहीं था। पिछली लोगों की शरीयतें बहुत मुश्किल मुश्किल थी। यहूदियों की आप उठा के देख ली, इतनी मुश्किल उनके अहकामात, उनके रोजे भी हमारे से ज्यादा लंबे, उनकी नमाजों की भी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी, उनकी पाकी नापाकी के भी अहकामात हमारे से ज्यादा सख्त थे, उनकी इवन तौबा के, वो तौबा ऐसे नहीं कर सकते तो तौबा कर ली बस माफ हो गया, तौबा के बाद भी उनकी कई चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस थे। देखिए हाँ, वो अब उन्होंने जब बछड़े को पूजा था, एक दूसरे को कत्ल करो, हमारे तो कब्रों को पूज पूज के भी और उसके ऊपर सजदे करके भी और उसके बाद भी एंड जिंदगी में भी जाकर तौबा कर ले तो तौबा हो जाती है उसकी। तो इतनी ज्यादा उनकी सख्ती थी, हमारे लिए आसानियां रखी गई। आप देखिए, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, खड़े के नहीं, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, आप आसमानी नहीं है तयम्मुम कर लो, आप सफर के अंदर तो तुम्हारी नमाज आधी हो गई, बेशक जमा कर लो सफर में नमाज को, कितनी आसानी है ना। आप बीमार हैं, आप रोजा ना रखो, फिदिया दे दो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके ऊपर जकात ही नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके ऊपर हज ही नहीं है, कितनी आसानी है। आपके लिए मेहर रख दिया गया, लड़कियों के मां बाप के ऊपर तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि आपने लड़कियां ब्यानी है तो अब आपको जहेज जमा करने पड़ेंगे, आसानियां रख दी। निकाह इतना आसान कर दिया कि सादा निकाह, आपको सारी से जिंदगी जोड़ जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है कि आए शादी करनी होगी तो क्या होगा फिर हमारा। दीन ने तो आसानियां पैदा की, खुद ही अपने लिए आपने मुश्किलें कर ली। कहीं निकाह कोई बड़े बड़े फंक्शंस के नाम पे, कहीं जहेजों के नाम पर, कभी कोई किसी चीज के नाम पर। तो देखिए, दीन इस लिहाज से कहा गया आसान है। जो हमने आसानियां, पता नहीं किधर से कौन सी चीज को हमने बना लिया, आसानी का मतलब ये होता है आजादी, आजानी का मतलब ये तो जो मेरा दिल करता है मैं करूं, बेशक मैं अपने पर जरा भी ना मुश्किल हूं, फिर तो ना नमाज पढ़ो, ना रोजे में भी तो भूख लगती है, ना प्यास भी तो लगती है, तो आसानी है ना, छोड़ दो रोजे, हर चीज ही छोड़ दो, हज में भी जाना पड़ता है वो भी छोड़ दो, जकात में भी पैसे देने पड़ेंगे ना तो छोड़ो, जकात देने की क्या जरूरत है, आसानी है ना। तो ये तो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन स्कीम ही है ना। तो ये है मतलब हरज का, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तरीका है तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहि सलाम का, कि वो भी शिर्क से पाक थे, वो भी तौहीद के दीन पे थे, तौहीद उनका दीन था, तो यही तरीका तुम्हारे बाप इब्राहिम का भी है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। बाज ने कहा कि यहाँ पे हुआ की जमीर इब्राहिम अलैहि सलाम की तरफ जा रही है, बाज ने कहा नहीं, अल्लाह की तरफ जा रही है, और ज्यादा यही सही रखता है कि अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, इसलिए कि आगे क्या है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कबलु वफी हादा, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इससे पहले भी, यानी इससे पहले शरीयतों में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम ही रखा था अल्लाह ताला ने, और इसमें भी कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम ही रखा। पिछली शरीय, पिछली किताबों, पिछली उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यही नाम दिया था। जो भी आसमानी किताबें आई उसके अंदर जो भी नाम दिया गया इस कुरान से पहले भी, वो भी मुस्लिम ही था, ये खुद अल्लाह ताला का रखा हुआ नाम है, सोचे अब आप जरा। हाँ ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हम सूरह बकरा में पढ़ रहे हैं ना, रब्बना वजाल मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना, उन्होंने ये दुआ करी थी ना, अल्लाह मुझे मुस्लिम बनाना, मेरी जुर्रियत में भी मुस्लिम ही उम्मत उठाना, तो उनकी दुआ भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नाम रखा है खुद तुम्हारा। तो अब जो इंसान इसके अलावा अपने नाम रखे और कहे कि हम किसी और चीज पे फखर करते हैं, जैसे आप नसाई में आप सल्लम ने की यह हदीस आती है, फरमाते हैं कि जो शख्स जाहिलियत के दावे अब भी करे, यानी बाप दादों पे हसब नसब पे फखर करना और इस करना और दूसरे मुसलमानों को हकीर समझना और इस्लाम को के ऊपर ना पकड़ो, उसको बस अपने और चीजों पे पकड़, वो जहन्नुम का ईंधन है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, अगरचे वो रोजे रखता हो, अगरचे वो नमाज भी पढ़ता हो, आपने फरमाया हाँ अगरचे वो रोजेदार हो और नमाजी हो, अल्लाह ताला ने जो नाम तुम्हारे रखे उन्हीं नामों से अपने आप को मनसूब करो, दूसरे मुसलमानों को भी पुकारो, यानी मुस्लिमीन मोमिनीन और इबादुल्ला, ये इब्ने कसीर में ये रिवायत मौजूद है अगर आपने देखनी हो। तो उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इससे पहले भी और इस कुरान में भी उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात होती तो कुरान में तो नहीं ना उन्होंने हमारा नाम रखा ये, हाँ मगर उन्होंने भी ये दुआ की थी। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए। तुम्हारा नाम ये रखा गया है, तुम्हें उम्मत मुस्लिमा बनाया गया है, और इस उम्मत को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल है कि वो हो जाए शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम हो जाओ गवाह लोगों पर, रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम बाकी इंसानियत पर गवाह हो जाओ। ये गवाही कौन सी है कि कयामत के दिन की ये गवाही के बारे में कहा गया। वैसे तो इंसान जो आप बाकी लोगों पर अपने दीन की आप गवाही देते हैं, जब आप अपने दीन पर चलते हैं तो आप अपने दीन की गवाही अपने अमल से दे रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन एक गवाही है जो कयामत के दिन उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे होगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? कि अल्लाह मैंने लोगों को तेरा पैगाम पहुंचा दिया। ठीक है, तो कयामत के दिन उनको गवाही देने के लिए खड़ा किया जाएगा। और तुम किस चीज पे गवाह होगी लोगों पे? कि ये हदीस आती है बुखारी के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन नूह अलैहि सलाम को बुलाया जाएगा, वो कहेंगे ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने तबलीग की थी लोगों को, यानी बता दिया था, मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। वो कहेंगे हाँ। फिर उनकी उम्मत को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या इन्होंने तुमको तबलीग की थी? वो इतने झूठे, वो कहेंगे हमारे पास तो कोई अजाब से डराने वाला आया ही नहीं, बिल्कुल साफ मुकर जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे पास कोई गवाह है? तुम्हारी कोई, नूह अलैहि सलाम से अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने पहुंचा दिया था अल्लाह का पैगाम? वो कहेंगे हाँ, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम और आपकी उम्मत ये गवाह है। फिर वो गवाही देंगे कि नूह अलैहि सलाम ने तबलीग की, आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम भी गवाही देंगे और ये उम्मत भी गवाही देगी। और इससे पहले हम सूरह बकरा में पढ़ भी चुके हैं ना, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। तो यही एग्जैक्टली बात वहां पे जो दूसरा पारा है उसके शुरू के अंदर ही 143 आयत के अंदर यही बात आती है कि रसूल शहीद होगा तुम पे कि भाई मैंने गवाही, शहीद का मतलब यहाँ पे क्या है? गवाह। रसूल गवाही देगा मैंने इनको पहुंचा दिया, और उम्मत मुस्लिमा गवाही देगी कि अल्लाह सारे पैगंबरों ने अपनी कौमों को, अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचा दिया। उनको कैसे पता चला कि पैगाम पहुंचाया नहीं? तो वो कहेंगे कि हमारे नबी ने हमें बताया और कुरान ने हमें बताया और हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए। ठीक है, तो इससे वो गवाही देंगे। और जिन्होंने कभी कुरान का इल्म ही नहीं लिया और उनको यही नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, कुरान हमें क्या बताता है, उन्होंने कभी पढ़ के ही नहीं देखा, वो कैसे इस जिम्मेदारी को उठाएंगे उस दिन? अल्लाहु अकबर। तो अच्छा, अब अलैकुम का एक माना, जो गवाही के बाद आला आ जाए ना तो खिलाफ का माना होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, यानी मैंने तो पहुंचा दिया था, अब आगे इन्होंने अमल किया या नहीं किया, अब इन्होंने क्या किया इसके बाद, अल्लाह मैंने तो पहुंचा दिया था, तो ये लोगों के खिलाफ गवाही बनेगा ना अगर लोगों ने नहीं माना तो। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ही नहीं पूरा किया एज उम्मती होने की, या ईमान ही नहीं लेकर आए, या मुसलमान हो भी गए थे तो उन्होंने अपने वो जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी मुसलमान होने की, देखिए एक होता है एक ओहदा, एक होता है कोई मसलन ओहदा या कह ले कोई फजीलत, और एक होती है जिम्मेदारी। आपको मसलन फजीलत मिल गई कि आपको पूरे मुल्क का सदर बना दिया गया, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ी फजीलत की बात, सब में आपको चुना गया और आपको सदर बनाया गया। अब आप फूले नहीं समाए और घर जाके लेट गए और कहा कि मैं तो सदर बन गई, मैं तो सदर बन गई, अब मैं आराम करूंगी आज से। नहीं, आप सदर बन गई हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना। तो ये उम्मत भी अगर आप आज इसकी पोजीशन को एंजॉय, इस फजीलत को एंजॉय कर रहे हैं ना कि मैं उम्मत मुस्लिमा में से हूं, तो कम से कम ये तो सोच लें कि आपको जो फजीलत मिली है वो इस वजह से मिली है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है और आप उस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं, इसलिए यह फजीलत है। अब सदर इसीलिए क्योंकि वो सदर का काम करेगा, ये थोड़ी होगा कि वो जाके घर में लेट जाएगा, आराम ही कर रहा है और कह रहा है मैं तो सदर बन गया। खुद सोचे उम्मते मुस्लिमा, बहुत बड़ी फजीलत है ये बात की कि आप उम्मते मुस्लिमा के एक फर्द, क्योंकि उस दिन इस उम्मत को सिर्फ ये शर्फ हासिल होगा कि ये गवाही देगी और बाकी उम्मतों को थोड़ी होगा। लेकिन अगर हमें कोई पता ही नहीं ना, अपनी जिम्मेदारी का कोई दुनिया में ख्याल है, तो ये लोग हमारे खिलाफ खड़े होके बोलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही हमारे खिलाफ बोलेगी। अल्लाह ताला ने तो चूज किया था, मगर खुद तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं? अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की नेमत भी दे दी, हमें उम्मत मुस्लिमा का फर्द भी बना दिया, जो बहुत बड़ी बात है। अब हम इसी में फूले नहीं समा रहे, हम तो उम्मत मुस्लिमा, हम तो उम्मत मुहम्मदी, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तो आखिरी नबी की उम्मत है, बस ये गुन गाते जा रहे हैं। आगे तुमने कुछ जॉब भी करनी है या नहीं, कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? तो अल्लाह ताला ने तो इजतबाकुम, तुमको चुन लिया है, तो अब चुन चुनने तो गए, आगे क्या है? अब आप सदर ऐसा बना के उसके बाद वो जाए बस शॉपिंग करता रहे और अपने सदर हाउस में बैठा रहे, वो कोई काम ही ना करे, तो क्या होगा फिर? उसको सजा भी उतनी बड़ी मिलती है फिर, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी थी और उसकी नेग्लिजेंस बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती है। इस तरह ये उम्मत है, इसके ऊपर अब जिम्मेदारी है पैगाम देने की, और ये नेग्लिजेंस अगर शो करेगी तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसको तो हक्का जिहादी कर देना चाहिए था, हक अदा हो जाए जिहाद का, तो किसी और ही कामों में पड़े, इनके काम भी कुछ और है, किसी और चीजों में थक रहे हैं। इनका तो मिशन वो था जो नबी का मिशन है, इनको तो पैगाम वो पहुंचाना था जो नबी ने अपनी जिंदगी में पहुंचाया, ये अब तुम्हारा फरीजा था। लेकिन वो तो खुद ही ईमान पे ना रहे, खुद ही इनको अपना रास्ता नहीं पता, खुद ही रास्ता गुम कर गए, एग्जिट ले लिया, किधर और ही फिर रहे हैं, और शोर एक ही मचाया हुआ, हम तो उम्मते मुहम्मदिया में से, हम तो उम्मत में, हम तो उनके चहेते, हम तो उनके, हम तो क्यामत के दिन क्या देंगे। ये देख लें फिर, सिर्फ कोशिश नहीं, यहां पे कहा गया कि कोशिश करते रहना, हक्का जिहादी, सख्त मेहनत, जितनी भी आपके अंदर ताकत है वो लगा देना। हर एक की अपनी अपनी ताकत होगी, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, हर एक के पास अपनी वुसत होगी, वो लगा दे जितना जिसके पास इल्म है, जितना जिसके पास वक्त है, जितना जिसके पास अपने आप को इसके लगाएं, फारिग करें, खुद अपने आप से पूछ लें क्या मैं यह हक अदा कर चुकी एक उम्मती होने का? क्या उम्मती होने के नाते भी मेरी कोई जिम्मेदारी है या बस उछलती कूदती रहूं मैं उम्मती हूं उम्मती हूं, खुशी में बस उछल रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल आता नहीं है तो नए कपड़े पहन के ईद मनाने बैठ जाते, यहाँ पे नाते पढ़े वहां पे नाते पढ़े, जी उम्मती हो गए हम, उसके बाद सारा साल याद ही नहीं कि उनका पैगाम क्या था, कुरान क्या कह रहा है। इसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो भी दी, इस बात के ऊपर ही कि तुम्हें गवाह उस दिन बनाया जाएगा, और जाहिदु फिल्लाह हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करनी है, इतनी ज्यादा मेहनत, अल्लाह अकबर। तो ये बताएं कि क्या मैं ये हक अदा कर चुकी, मैंने मेहनत कर ली, मैंने उम्मती होने का हक अदा कर दिया, कोई कमी तो नहीं रह गई या कमियां ही कमियां, अभी शुरू भी नहीं किया, कुछ काम करना है मुझे कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? देखिए ना, आप एक माँ बनती हैं, आपकी एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है? अब आपकी शादी हुई, अब शादी में ही आप खुश हैं, भाई मेरी जो शादी हो गई, शादी हो गई, चलते फूल फिर रहे, भाई शादी हो गई तो आप बीवी बन गई ना, आपकी कोई जिम्मेदारी भी तो है कि नहीं है, या उछलते ही रहेंगे तो सारा वक्त? जिम्मेदारी है ना, मानते हैं ना? जब भी आपको कोई भी एक वजीलत मिलती है, एक आपको एक शादी हुई, एक जाहिर है, एक आप बीवी बन गई, एक आपको दर्जा मिल गया, मां बनी, एक दर्जा मिल गया, अब कुछ जिम्मेदारियां साथ आई, अब आप जिम्मेदारी तो निभाती नहीं, बस खुश होती जा रही, मैं एक मां बन गई, बच्चे उधर फेंक गए, आपको पूछा नहीं जाएगा भला? इस तरह आप कहती हैं मैं उम्मती हूं उम्मती हूं उम्मती हूं, फिर क्या जिम्मेदारी है आपकी? कुछ है कि है ही नहीं है कुछ? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर किस बात के पर इतने खुश हो रहे हैं मैं उम्मती हूं? कुछ तो जिम्मेदारी पड़ी ही होगी ना, जो दूसरों से डिफरेंट होगी, जो आपके जिम्मे होगी। आखिरी आखिरी नबी की उम्मत होने का मतलब है कि अब तो कोई नबी नहीं आना, आखिरी थे वो, तो फिर कुछ आपकी जिम्मेदारी हुई? पिछले वालों को तो चलो ठीक है, उनको उन्हें तो आगे नहीं पहुंचाना था, उनकी वो जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए उनकी इतनी फजीलत थोड़ी है। उनके तो नबी पहुंचा गए, उनका नहीं काम है ये बेचारे क्रिश्चियन खाम का ऐसे भागे फिर रहे हैं दुनिया जहान के अंदर, इतनी मिशनरी काम कर रहे हैं और ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पे हम भी नहीं जाते, तो वो वहां जाके काम कर रहे हैं, लोगों तक पैगाम अपना पहुंचा रहे हैं, उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं। उनके नबी ने तो नहीं इनको ये कहा था? तो कुरान के अंदर उन्होंने कहा था बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, सिर्फ बनी इसराइल की तरफ। वो काम हम मारे मारे फिर रहे हैं, वो हमारी तो ये जिम्मेदारी थी कि हम आखिरी नबी की उम्मत, इसी पे तो हमें फख्र है ना, आखिरी नबी की हम उम्मत, हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, उनके बाद तो कोई नबी नहीं आना। फिर क्या सोचा आपने? कुछ काम करना है, कोई ये जिम्मेदारी निभानी है, कोई हक अदा करना है उम्मती होने का, जैसे माँ का, माँ के ऊपर एक जिम्मेदारी है, बीवी बनने पे जिम्मेदारी, उम्मती बनने पे भी जिम्मेदारी, तो पहले वो जिम्मेदारी समझे कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोशिश करें, तभी कोशिश होगी ना। आज आधी से ज्यादा उम्मत को तो यही नहीं पता हमारी कोई जिम्मेदारी भी है। अच्छा, हमने भी कोई गवाही देनी है क्या? मतलब अगर ये नहीं पता होगा ना तो खिलाफ ही गवाहियां आएंगी फिर। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, हम आज मरने लगे हुए हैं तो इन्हीं पीछे फिरकों के पीछे, इमामों के नामों के पीछे, इनके पीछे बस ये ही हमारे काम रह गए। बाकी हमारी उम्मत ही होने वाली जिम्मेदारी, मुस्लिम होने वाली जिम्मेदारी, उसका कोई पता ही नहीं। अकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़का, ये जिम्मेदारी ये तभी निभाई जाएगी जब इंसान नमाज और जकात इसके अंदर पाबंदी करेगा। ये हेल्प करते हैं, नमाज भी हेल्प करेगी, जिसकी नमाज ही उसके लिए मुश्किल हो गई ना, उसे और भी काम नहीं किए जाएंगे, सारी चीजें ही मुश्किल होती जाती। एक बेसिक्स है ना, ये बेसिक चीज भी नहीं जिससे होगी तो आगे क्या होगा फिर? तो ये स्टार्ट है, नमाज को कायम करना, जकात अदा करना, वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह को थाम लो। पहले आया था ना वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, यहाँ पे हब्ल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है अल्लाह को थाम, अल्लाह की तरफ रुख कर लो, अल्लाह तआला के साथ चिमट जाओ, यानी मजबूत थाम पकड़ लो उसको, क्योंकि जो अल्लाह तआला के साथ चिमट गया तो फिर उसको कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, जिसका अल्लाह साथी बन गया वो फिर उसको संभाल लेगा, इसका उसका सहारा ले लो। हुआ मौला को, वो तुम्हारा मौला है, यानी ये जब काम इंसान करने लगता है ना, जाहिर है मुखालफतें भी आती हैं, कहीं से मलामतें आएंगी, कहीं कोई बुरा भला कहेगा, कहीं कोई कुछ कहेगा, कहीं कोई डराएगा, कहीं कुछ, तो हजार तरह की चीजें आती हैं, तो बस अल्लाह को थाम लो, वो तुम्हारा मौला है। वनेमल मौला व नेमन नसीर, बस कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा मददगार है। इब्ने अबी हातिम में रिवायत आती है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अपने गुस्से के वक्त तू मुझे याद कर लिया कर, मैं भी अपने गजब के वक्त तुझे माफ फरमा दिया करूंगा, और जिन पर मेरा अजाब नाजिल होगा मैं तुझे उनमें से बचा लूंगा, और बर्बाद होने वालों के साथ तुझे बर्बाद नहीं करूंगा। किस सूरत में? कि तू मुझे अपने गुस्से में भी याद रख। ए इब्ने आदम, जब तुझ पे जुल्म किया जाए तो सब्र और जब्त से काम ले, मुझ पर निगाहें रख, मेरी मदद पर भरोसा रख, मेरी इमदाद पे राजी रह, याद रख मैं तेरी मदद करूं ये बेहतर है इससे कि तू आप अपनी मदद करे। जाहिर है जिसकी मदद में अल्लाह आ गया तो फिर उसे और किसी की मदद की भी नहीं जरूरत, वो क्या हाथ पैर मारेगा, उसके लिए अल्लाह की मदद काफी है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सूरत मुकम्मल होती है और एक तरह से कंक्लूड होती है कि हमें करना क्या है, अब करने के काम क्या है हमारे जिम्मे। शिर्क की मुजम्मत भी हो गई, तौहीद का पैगाम भी आ गया, लेकिन अब तुम क्या करो, तुम उठो और काम करो। जिहाद के अंदर स्ट्रगल है, स्ट्रगल मेहनत मांगती है, यानी इंसान अब उठे और अपने आप को लगाए, यानी कि बैठे बिठाए ही बस सारा काम हो जाए। और देखिए अल्लाह ताला ने चुन लिया ना, चुनना एक बहुत बड़ी इंसान के लिए बात है कि अल्लाह का चुनाव है हम, अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि हम इस उम्मत में से होंगे, हम मुस्लिम बने। तो इसलिए इस चीज को जहां अपने लिए ऑनर समझे, वहां पे इस ऑनर को बरकरार, इस तमगा जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है, इसको बरकरार रखने के लिए भी कोशिशें करें। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया, अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। हर पारा हमें एक मैसेज देकर मुकम्मल होता है, हर सूरत के एंड में एक मैसेज है। अल्लाह ताला इसको अमल में लाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الولي الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.